नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी ज्ञान भारतम पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच में तेजी लाना है। कल से शुरू हुए 3 दिन के सम्मेलन का विषय है पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है जिसका उद्देश्य मॉरिशस में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि ये पहल सहायता नहीं बल्कि उनके साझा भविष्य में निवेश है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और मॉरिशस दो राष्ट्र हैं लेकिन हमारे सपने एक हैं।
फ्री, ओपन, सिक्योर, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर हमारी साझा प्राथमिकता है। इस संदर्भ में मॉरिशस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा और मैरिटाइम कैपेसिटी को मजबूत करने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इंडिया एंड मॉरिशस आर टू नेशंस बट अवर ड्रीम्स आर एंड डेस्टिनी आर वन।
दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद भारत और मॉरिशस ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने परस्पर सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। इस बीच विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि भारत और मॉरिशस समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मॉरिशस भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और महासागर विजन का एक अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। देहरादून में श्री मोदी ने राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति, बादल फटने, बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान की समीक्षा की। श्री मोदी ने बाढ़ और संबंधित आपदाओं में मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की है। निर्वाचन आयोग आज सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ काम करने वाले मीडिया अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन करेगा। कार्यशाला का उद्देश्य ये स्पष्ट करना है कि देश में चुनाव संविधान के अनुसार कराए जाते हैं। इसमें कानूनी, तथ्यात्मक और नियम आधारित सूचनाओं को समय पर और समन्वित तरीके से संप्रेषित करने के महत्व के बारे में भी बताया जाएगा। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में प्रथम वार्षिक हरित हाइड्रोजन अनुसंधान और विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री जोशी ने हाइड्रोजन नवाचार में स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए 100 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव आमंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये योजना हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण, परिवहन और उपयोग प्रौद्योगिकियों में पायलट परियोजनाओं के लिए प्रति परियोजना 5 करोड़ रुपए तक प्रदान करेगी। उत्तर सिक्किम के मंगन जिले में पर्यटन गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं। जून में बाढ़ और भूस्खलन के बाद से जिले में पर्यटन बंद था। पर्यटन विभाग के मुख्य अपर सचिव सीएस राव ने कहा कि पर्यटन मंगन जिले के लाचुंग, योंगथांग और जीरो प्वाइंट जा सकते हैं लेकिन लाचेन में पर्यटन अगले साल जनवरी में शुरू होगा। राज्य सरकार ने कहा है कि पर्यटकों को सूर्यास्त के बाद यात्रा की अनुमति नहीं होगी। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा है कि संवैधानिक सीमाओं के भीतर देश की वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कई नागरिक संगठनों ने युवाओं से वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से निपटने के लिए काम करने का आग्रह किया है। हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।